नमस्कार दोस्तों, मोबाइल न्यूज से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है पक्ष विपक्ष में वैज्ञानिक चेतना और सरकारी राम। जन भावनाओं को खुश करने से इतर सरकार के क्या काम है? संविधान की भावनाओं के अनुसार सरकार का काम है कि वह देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करे, जिससे देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। राम मंदिर बनने पर चाहे किसी को भी कोई आपत्ति ना हो, इतर इसकी कीमत क्या है? देश की 20% आबादी को दोयम दर्जे का नागरिक बनकर या फिर विज्ञान के सहारे आगे बढ़ रहे देश को पीछे की तरफ ले जाकर राम मंदिर जन भावनाओं का मसला है। आज हमारे साथ गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए। सर, मोबाइल पे स्वागत सर आपका।
जी नमस्कार योगेश भाई।
सर, वैज्ञानिक चेतना और सरकारी राम, इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर,
वैज्ञानिक चेतना और सरकार के राम, यह टॉपिक ही अपने आप में एक प्रकार का हास्यपद है। सरकार के राम तो हो ही नहीं सकते। एक तरफ कल्पना है कि कण-कण व्यापी राम, तो राम तो सबके है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जीव जंतु है, सब में राम है। यह अपना देखने का नजरिया है और सरकार किस नजरिए से देख रही है उसका नजरिया है। परंतु यदि जहां तक हम लोग राम के बारे में जानते हैं, तो हम लोग तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज, हम लोग उनको मानते हैं, पूरा भारत मानता है, पूरा दुनिया मानता है। और यह भी कल्पना है कि राम राज्य की जो कल्पना है, वह कल्पना गांधी ने किए थे और गांधी जी चाहते थे कि राम राज्य को अपनाया जाए। परंतु आज जो सरकार है, यह देखिए कि यह सरकार का काम राम राज्य को लाना नहीं है। इस सरकार का काम है राम को केंद्र में ला करके अपनी सत्ता को लाना है। यह राम का प्रयोग कुर्सी के लिए कर रही है। सरकार को हम बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने राम मंदिर बनाया, राम जी के नाम पे बड़े बड़े काम कर रहे, होना चाहिए। परंतु उसके अंदर वैज्ञानिक चेतना भी पैदा करना चाहिए, लोगों में अंधविश्वास नहीं पैदा करना चाहिए। भगवान राम और उनके समय को उठा करके देखिए तो लोगों में अंधविश्वास नहीं पैदा किया गया। परंतु आज सरकार राम राज्य की बात तो करती है, परंतु राम राज्य में पूंजीवाद को पैदा करती है। सरकार से पूछना चाहिए कि आप बताइए कि राम के राज्य में कितने पूंजीपति पैदा हुए, कितने पूंजीपति लोग थे, या राम के राज्य में कौन एक व्यक्ति था जो पूरे शासन को चलाता था? तो कोई नहीं दिखाई देगा, एक पैसा वाला नहीं दिखाई देगा। परंतु आज जो राम के नाम पर सरकारें बनी है, यह तो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों को पैदा कर रही है राम के नाम पर, और लोगों में राम मंदिर दिखा रही है, लोगों में भगवान की चेतना को दिखा रही है, और उसके आधार पर शोषण करने का काम कर रही है। जबकि किसी भी भगवान को जाकर के देखिए, राम के चरित्र को देखिए, राम के दर्शन को देखिए, राम के राज्य को देखिए, तो उसमें शोषण नहीं है, उसमें जनता की खुशहाली की बात कही गई है। दैहिक दैविक भौतिक तापा ऐसी उसमें कल्पना की गई है। परंतु आज आप देखिए सरकार में, तो आज सरकार में दैहिक दुख है, भौतिक दुख है, और नाना प्रकार के दुख भरे है। ना लोग सुखी है, ना लोग आर्थिक रूप से मजबूत है, ना सामाजिक रूप से मजबूत है, ना राजनीतिक रूप से मजबूत हो रहे। सरकार लोगों को मजबूत करने का काम नहीं कर रही है। विज्ञान का एक अलग पहलू है कि आज हम एक तरफ तकनीकी के दुनिया में जा रहे हैं, मशीन के दुनिया में जा रहे हैं, परंतु हम उसको दिमाग में नहीं उतारने का प्रयास कर रहे हैं। हम आम जनता के दिमाग में प्रयास नहीं कर रहे उतारने के लिए। इसके साथ साथ एक और बात यह होना चाहिए योगेश भाई कि एक तरफ विज्ञान के माध्यम से जितना मशीन और तकनीकी का विकास हो रहा है, उसमें मानवीय मूल्यों का क्षरण हो रहा है, मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। तो आज तो सरकार को यह चाहिए कि राम राज्य की कल्पना को विज्ञान से जोड़ करके लोगों के दिमाग में उतारे, ताकि मूल्य भी बचे रहे, राम राज्य की कल्पना भी होते रहे, समाज में समता भी आते रहे, विज्ञान भी बचा रहे, और समाज के अंदर मानवीय धर्म और मानवता भी जिंदा रहे। तब जाकर के राम राज्य को जिंदा किया जा सकता है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विचार को जमीन पर उतारा जा सकता है।
जी सर। सर, राम मंदिर के निर्माण में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का क्या काम, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर,
जो संवैधानिक पदों पर बैठ करके राम मंदिर के निर्माण का काम कर रहे हैं, यह एक प्रकार से हिंदुस्तान को धार्मिक राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदुस्तान की जो सर्वधर्म संभाव की नींव है उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब सोमनाथ मंदिर को छिन्न भिन्न कर दिया गया था आक्रांताओं द्वारा, और जब सरदार पटेल गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास कि सोमनाथ मंदिर को बनाना है, उसके लिए राष्ट्रीय कोष की जरूरत है, तो राष्ट्र से कोष लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि मंदिर मस्जिद और कोई भी धार्मिक स्थल बनाने के लिए राष्ट्रीय कोष का उपयोग नहीं करना चाहिए, जनता से पैसा लेना चाहिए। तो सरदार पटेल वापस हो गए और जनता से पैसा लेकर के सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराए। तो आज तो जो सरकार के पद पर लोग बैठे हुए अपने पद का दुरुपयोग तो कर रहे हैं, कहीं कहीं तो यह भी आ रहा है कि राष्ट्रीय कोषों का भी दुरुपयोग कर रहे हैं और नाना प्रकार के कोष को उधर मोड़ दिए हैं, जबकि कल्पना नहीं हो सकती है। ठीक है, मंदिर अच्छा बन रहा है, दुनिया का सेंटर बन रहा है, वहां पे तमाम सुविधाएं आ रही है, वहां पे रोजगार आएगा, इस सबसे हम लोग सहमत है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सरकार उसको अपने पक्ष में लेकर के जाए यह सही नहीं है। सरकार को चाहिए कि भगवान राम की जो नीति है उस पर चले और संवैधानिक पदों का दुरुपयोग न करे और किसी दल को, किसी विपक्षी पार्टी को या किसी को भी उसके नाम पर दबाने का प्रयास न करे, जबकि राम राज में समता की बात थी, राम राज में सबको सुना जाता था, प्रभु रामचंद्र जी तो अपनी प्रजा के सुनते थे और प्रजा के सुनने के बाद कई निर्णय लिए, परंतु आज की सरकार तो अपनी प्रजा को सुन नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने संवैधानिक पदों पर जो बैठी है, जो पद मिले हैं उसका दुरुपयोग कर रही है। आज जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उसको कह रहे कि राष्ट्रद्रोही है, उसको राष्ट्र के अंदर जेल में डाल दे रहे, उसको पार्लियामेंट से निकलवा के फेंकवा दे रहे। राम के समय में तो राम के नीतियों के भी लोग आलोचना करते थे, लेकिन राम जी ने तो किसी को बाहर नहीं करवाए, राम जी ने तो किसी को जेल में नहीं डलवाए, कारागार में नहीं डलवाए, परंतु आज की सरकार केवल राम का नाम ले रही है और अपने संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को, अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल रही है। जबकि एक बात यह है योगेश भाई कि सरकार देश नहीं होती है, सरकार राष्ट्र नहीं होती है, सरकार लोगों द्वारा चुनी गई 5 साल की एक किरदार के रूप में होती है, जनता मालिक है, परंतु जनता अगर सरकार के खिलाफ बोल रही है तो उसको कह रहे कि राष्ट्रद्रोही है। तो आज तो संवैधानिक पदों का दुरुपयोग किया जा रहा है जो प्रभु रामचंद्र के चरित्र में है ही नहीं, उनके शासन में है ही नहीं।
सर जहाँ एक ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवीय चेतना दिखते हैं, वही दूसरी ओर सरकार के कार्यों में राम कहाँ दिखते हैं?
सरकार के कार्यों में राम है ही नहीं और सरकार के कार्यों में वैज्ञानिक चेतना भी नहीं। वैज्ञानिक चेतना का प्रयोग करके सरकार और लोगों को अंधविश्वासी बनाने का काम कर रही है, वैज्ञानिक चेतना लोगों में डेवलप नहीं होने दे रही है। और राम राज्य की जो कल्पना है, प्रभु राम की जो कल्पना है, वो तो सरकार में है ही नहीं। अगर सरकार में प्रभु राम की कल्पना होती तो सत्ता को केंद्रीकृत नहीं करती, सत्ता को सिकुड़ाती नहीं, पार्लियामेंट से विपक्ष को निकाल करके फेंकती नहीं, अधिनियम उस समय नहीं पास करती जब विपक्ष नहीं होता। राम राज का मतलब है कि सहमति से सारे काम होने चाहिए, सारे काम बैठ करके होने चाहिए और समाज के अंदर समता आना चाहिए। राम राज का मतलब है कि देश की जो संपत्ति है, देश की जो व्यवस्था है, देश के जो संविधान है, उस पे सभी का समान अधिकार होना चाहिए। परंतु इस सरकार जो राम राज्य की बात करती है उसमें देख लीजिए कि केवल और केवल पूंजीपतियों का राज चल रहा है, केवल और केवल संवैधानिक संस्थाएं जो ईडी सीडी सीआईडी क्या क्या बनाए उनका राज चल रहा है और बोलने वालों के घर पे छापा लगा दिया जा रहा है। तो यह राम राज्य नहीं हो सकता है और ना ही वैज्ञानिक चेतना हो सकती। वैज्ञानिक चेतना का मतलब तो यह होता है कि सरकार भी अपने मस्तिष्क को खोले और आम जनता भी अपने मस्तिष्क को खोले और उसके आधार पर निर्णय ले और उसके आधार पर चुनाव में जाए, उसके आधार पर हर निर्णय हो और संविधान को सम्मत मान करके संवैधानिक कामों को किया जाए।
जी सर, सर जब भावनाओं को खुश करने से इतर सरकार के क्या काम देखते हैं? संविधान की भावनाओं के अनुसार काम हो रहे हैं क्या?
संविधान की भावना अलग बात है और लोगों की भावना अलग बात है। आज की सरकार संविधान की भावनाओं को नहीं उकेर रही है बल्कि आम लोगों की भावनाओं को उकेर करके राजनीति करके सत्ता पाना चाहती है। सरकार का तो यह मकसद बन गया है और विपक्षी पार्टी जो आज सत्ता में नहीं है वो भी जब सत्ता में तो उनका भी यही मकसद है योगेश भाई, उन्होंने भी संविधान सम्मत काम नहीं किए। देश के अंदर जो भी सरकारें रही उन्होंने संविधान का पालन नहीं किया, हालांकि संविधान के उल्टे जाकर के काम किया है। संविधान का मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा, राम मनोहर लोहिया की आत्मा, संविधान का मतलब है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मा, परंतु सरकारें जो बनी इन लोगों के आत्माओं के खिलाफ, इनके विचारों के खिलाफ जाकर के काम की है, तो यह सरकार संविधान सम्मत नहीं चल रही है, सरकार संविधान को लेकर के नहीं चल रही है, बल्कि लोगों की भावनाओं को ठगने का काम कर रही है, और लोग भी उसी प्रकार के बन गए हैं जो स्वार्थ पे संविधान को देखने का काम कर रहे हैं। जबकि भारत का संविधान एक पारदर्शी और एक न्यायप्रिय व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें किसी का शोषण नहीं है, परंतु आज सरकार की जो नींव बनी है वह शोषण के आधार पर बन रही है, जो भारत के संविधान से सम्मत नहीं है।
जी सर, सर महाराष्ट्र की सरकार ने 22 जनवरी को छुट्टी की घोषणाओं पर विचार कर रही है, सर इस निर्णय को कैसा देखते हैं आप?
यह केवल महाराष्ट्र सरकार की बात नहीं है योगेश भाई, यह देश की हर सरकार और केंद्र सरकार की भी बात हो गई है कि अब देख लीजिए कि किसी जाति का कोई नेता है या किसी जाति का कोई भगवान है तो उस दिन वो छुट्टी दे दे रहे। क्यों दे रहे? केवल और केवल कि उस जाति के लोगों को खुश कर दिया जाए। अब महाराष्ट्र में छुट्टी हो जाएगी तो क्या होगा उस दिन, बताइए 22 जनवरी को? ठीक है, सब लोग अपने घर पे राम मंदिर में रह करके पूजा करेंगे, अच्छी बात है, होना चाहिए भाई, हमारी आत्मा है पूजा पाठ करना, हम धार्मिक देश, हम धर्म को मानते हैं, हम सारे धर्मों को मानते हैं, सब लोग अपना अपना पूजा करेंगे, अच्छी बात। लेकिन सरकार यह अपील करती है कि आप जहाँ है जिस विभाग में वहीं पे प्रभु रामचंद्र के रामराज्य पे कल्पना करा लीजिए, चर्चा करा लीजिए, प्रभु रामचंद्र के नीतियों पे चर्चा करा लीजिए, उनके समय की समानताओं पे चर्चा करा लीजिए, उनके समय की अर्थव्यवस्था पे चर्चा करा लीजिए तो और बेटर होता। परंतु यह छुट्टी देना यह कहीं से वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिखाई नहीं दे रहा है, और इससे यह नहीं दिखाई दे रहा है कि छुट्टी दे देने से भगवान राम का चरित्र लोगों के जीवन में उतर जाएगा, यह दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। यह सरकार का अपना एक मोटो है कि देखिए हम छुट्टी देते हैं, और यह एक वोट लेने की एक नीति हो सकती है, बाकी कोई संदर्भित और कोई सारगर्भित नीति नहीं है।
जी सर, सर एक और बड़ा प्रचलन है कि राम राज्य, किस तरीके से आप एक देखते हैं सपनों में और वास्तविक में क्या देखते हैं, जहां 1.80 करोड़ जनता आज भी राशन पर आश्रित देखते हैं, और राम राज्य की कल्पना किस रूप में देखते हैं?
भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को आप उठा करके पढ़ लीजिए और भारत के संविधान के प्रस्तावना को पढ़ लीजिए तो उसमें साफ साफ राम राज्य की नीति दिखाई देती है।
जी,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ लीजिए, उनके हिंद स्वराज किताब को पढ़ लीजिए तो सीधा सीधा राम राज्य हमको दिखाई देता है। रामचरितमानस को पढ़ लीजिए, तुलसीदास के रामचरितमानस को पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण को पढ़ लीजिए तो हमें रामचरितमानस के सारी बातें दिखाई दे देगी, रामराज की नीति दिखाई दे देगी। परंतु आज की जो सरकार है यह व्यवहार में नहीं है, कर्म में नहीं है और वाणी में भी नहीं है, यह राम के नीतियों को मानने वाली नहीं है। और यही सरकार ने, इसके पूर्व की सरकारें भी राम राज्य की केवल और केवल हत्या की है, उसके नीतियों पर नहीं चली है। अगर राम राज्य को हम माने होते तो देश के अंदर इतनी असमानता नहीं होती कि देश के अंदर जब कोरोना लगा था तो देश के आम नागरिक एक पेट का एक टाइम खाना खा करके सोते थे, उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई थी, और देश के अंदर एक उद्योगपति एक मिनट में 90 करोड़ रुपया कमा रहा था। यह रामराज की कल्पना नहीं हो सकती है। रामराज की कल्पना होती तो आज देश के अंदर सबके लिए शिक्षा उपलब्ध होती, आज देश के अंदर सबके लिए चिकित्सा उपलब्ध होती, आज देश के लिए सबसे सभी के लिए संसाधन उपलब्ध होते। देश को निजीकरण के हवाले नहीं किया जाता, देश को पूंजीपतियों के हवाले नहीं किया जाता। राम राज्य की कल्पना होती तो समाज के अंदर समानता होती। आज आप देख लीजिए कि आम आदमी की आय 2% के दर से बढ़ रही है और पूंजीपतियों की आय 20% के दर से बढ़ रही है, तो ये कौन से राम राज्य की कल्पना है? यह तो पूंजीवाद की कल्पना है जिसमें गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। रामराज की कल्पना होती तो बाघ और बकरी एक घाट पर बैठ करके पानी पीते, उसमें कोई गरीब और अमीर नहीं होता। हाँ, सरकार की रामराज की नीति कुछ अलग हो सकती है, परंतु जो हमारे प्रभु राम की नीति है उस पे सरकारें न चल रही है, न पूर्व की सरकारों ने चला और न ही वर्तमान की सरकार चल रही है।
जी, तो ये थे गांधीवादी लोहिया विजय विचारक डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर वैज्ञानिक चेतना और सरकार के राम इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा की। अनूप सर, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी योगेश भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी प्रभु रामचंद्र के नीतियों को मानते हैं और हम चाहते हैं कि भारत का निर्माण राम के नीतियों से हो।
जी, तो ऐसे कार्यक्रम सुनने के लिए जुड़े रहे मोबाइल वाणी का, सुनते रहे मोबाइल वाणी। नमस्कार।